मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 22 फरवरी 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं विकास कुमार, आप माधेपुरा बिहार से हैं, रोहिताश नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, विवेक यादव सैदपुर उत्तर प्रदेश से हैं और सुनीता यादव आप भी सैदपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो विकास, रोहिताश, विवेक और सुनीता आप चारों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आइए अब इससे पहले कि मैं न्यूज एनालिसिस की बात शुरू करूं आज आपको मुख्य विषय के बारे में बता देता हूं और वो मुख्य विषय है नैतिकता का संकट। इस पर हम थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे। पहले आइए हम दो मुख्य खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स कल अगर आपने डीडी न्यूज देखा हो तो आपने पाया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो अभी इन्वेस्टमेंट का जो समिट चल रहा है, मतलब निवेश को आकर्षित करने के लिए जो सम्मेलन चल रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। उस पर काफी देर तक दूरदर्शन पर न्यूज आती रही और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के कुछ लोगों से बातचीत भी उस समय की गई, बहुत अच्छी बातचीत थी। तो पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आईएएस में बैठ रहे हों, चाहे स्टेट सिविल सर्विस में बैठ रहे हों, चाहे और भी किसी दूसरे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हों, उनके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तो उनको विशेष रूप से इस खबर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं इसके जो राष्ट्रीय स्तर का जो परिदृश्य होगा, मैं मित्रों उस पर थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने देखी जो बात कही, अब उसमें से हम अपने लिए क्या निकालें, सिविल सर्विस के लायक क्या है, यही तो सबसे बड़ी क्षमता होती है सिविल सर्विस की, प्रिपरेशन की। तो मित्रों आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और बड़े स्पष्ट रूप से कहा, और रेडियो न्यूज में भी ये बात थी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसे आप हिंदी में कहेंगे रक्षा औद्योगिक गलियारा, इसकी बात उन्होंने कही और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि इससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 20,000 करोड़ रुपए का मतलब कह लीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें 2.5 लाख लोग काम पर लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे होगा। और ये उन्होंने बुंदेलखंड एरिया के लिए कहा है। दोस्तों तो जब इस तरह की खबरें आती हैं तो देखिए अब हमारे पास तैयारी करने के दो तरीके हैं। पहली तो बात यह है कि हम इस खबर को पढ़ें और छोड़ दें, ठीक है थोड़ी सी जानकारी मिल गई। लेकिन जो रियल प्रिपरेशन है वो इस तरीके से की जानी चाहिए कि भाई ये जो रक्षा औद्योगिक गलियारा है ये है क्या। मुझे नहीं मालूम कि आप सबने बजट को कितने ध्यान से सुना होगा या उस पर कितना उसकी कितनी चीजें नोट की होंगी। देखिए सारी चीजें तो नोट करना संभव भी नहीं होता है, लेकिन यह है कि बाद में अगर कोई ऐसी चीज आती जैसे रक्षा औद्योगिक गलियारा, तो जब मैं इसकी डिटेल्स में जाने की कोशिश करता हूं तो फिर मुझे बजट में इसके सूत्र मिल जाते हैं। और अगर बजट में इसके सूत्र मिल गए तो हो सकता है कि जब मैं बजट के बारे में सुन रहा था तब मेरे लिए वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन अब जबकि रक्षा औद्योगिक गलियारा चर्चा में आ गया, राष्ट्रीय स्तर पर आ गया, प्रधानमंत्री जी ने उसका इतना जब महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख कर दिया तो डेफिनेटली ये फिर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। मित्रों अभी जो बजट पेश किया गया था उस बजट को पेश करते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि भारत में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे एक नहीं बल्कि 2, राइट। तो उसमें जो एक गलियारा, देखिए रक्षा औद्योगिक गलियारा क्या है पहले ये समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। गलियारा तो हम कह देते हैं गली मोहल्ले की जो गलियां होती हैं, तो गली की विशेषता क्या होती है कि दोनों तरफ मकान खड़े हैं, मकान बने हुए हैं। तो गलियारा यहां एक बड़े सेंस में है, मतलब एक रोड बनाया जा रहा है, एक रास्ता बनाया जा रहा है, पाथ बनाया जा रहा है, ठीक है। और उस पाथ के किनारे औद्योगिक इकाइयां होंगी, इंडस्ट्रीज लगी हुई होंगी। इंडस्ट्री किस चीज की लगी होंगी? ऐसी इंडस्ट्री लगी होंगी जो डिफेंस की चीजें बना रही होंगी, डिफेंस के इक्विपमेंट बना रही होंगी। तो होता क्या है कि जब एक ही गलियारे में वो चीजें बनने लगती हैं तो बहुत सुविधाजनक हो जाता है, चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो बहुत मतलब सहूलियत वाली चीज हो जाती है। तो जब एक ही रास्ते पर, अब ये गली तो हम कहते हैं तो छोटी सी गली होती है, लेकिन ये तो सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है, तो एक ऐसा सड़क बनाया जाएगा कह लीजिए कि जिसके दोनों ओर डिफेंस से संबंधित इंडस्ट्री होंगी। और जो डिफेंस की इंडस्ट्री होंगी इसमें देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की भी इंडस्ट्री होंगी, प्राइवेट सेक्टर की भी इंडस्ट्री होंगी, लघु उद्योग भी होंगे, सूक्ष्म उद्योग भी होंगे, मध्यम श्रेणी के भी उद्योग होंगे, मतलब हर तरह के डिफेंस से संबंधित उद्योग इस पूरे के पूरे रास्ते पर फैले हुए होंगे। तो इसका मतलब नहीं कि हर जगह पर होंगे, मतलब जो भी उद्योग लगेंगे स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए, वातावरण और दूसरी सामग्रियों को देखते हुए वो स्थापित किए जाएंगे, राइट। इस तरह के दो गलियारे बनाए जाने हैं। एक गलियारा जो होगा फ्रेंड्स वो चेन्नई और बेंगलुरु के बीच होगा, ये कट्टुपल्ली बंदरगाह से शुरू होगा, फिर चेन्नई जाएगा, फिर त्रिची जाएगा, फिर कोयम्बटूर जाएगा और होसुर पर खत्म हो जाएगा, राइट। इस साउथ के जो स्टूडेंट है उनके लिए जानना ज्यादा जरूरी है, और जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको दोनों इन गलियारों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। रिपीट कर देता हूं, कट्टुपल्ली बंदरगाह से शुरू होकर चेन्नई, त्रिची, कोयम्बटूर से होते हुए होसूर, और जो दूसरा गलियारा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है वो देखिए आगरा, फिर अलीगढ़, फिर लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, ये दो गलियारे इस तरीके से बनाए जाएंगे। मित्रों ये पहली खबर थी जो बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। जो दूसरी खबर थी वो कनाडा को लेकर के है कि कनाडा के आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हुए हैं और कल उनकी मुलाकात हुई, अखबारों में आप उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आप पढ़ रहे हैं। न्यूज में जो है उसको आधार बना करके मैं केवल इतना भर के बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपने सुना है कि पंजाब में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं या अलगाववादी गतिविधियां हो रही हैं उनको लेकर के भारतीय नेताओं ने अपनी जो चिंता है वो व्यक्त की, और फिर जो कनाडा के जो मिस्टर जस्टिन हैं उन्होंने ये बात कही कि नहीं, वो अपनी जमीन का इस्तेमाल इस तरह की गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 1984 में एक ब्लू स्टार घटना घटित हुई थी, आपको मालूम होगा, जब जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है वहां सेना भेजी गई थी और वो बड़ी दुखद घटना रही, सेना भेजनी पड़ी और वहां दुनिया भर के हथियारों के जखीरे मिले, क्योंकि वो एक प्रकार से सैन्य अड्डा जैसा बन गया था, आतंकवादियों का अड्डा बन गया था, और वहां बेसिकली ये आतंकवादी से ज्यादा कह लीजिए कि अलगाववादी थे। खालिस्तान शब्द आपने सुना होगा, तो ये मांग कर रहे थे अलग होने की, अलग देश की, और उसे इन्होंने नाम दिया था खालिस्तान। तो ये कहा जाता है कि जो खालिस्तान के जो सूत्र थे वो कैनेडा में थे, मतलब कैनेडा में कुछ लोग थे जो इस आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे, वहां से पैसा आता था, हथियार आते थे और वो इनकी मदद करते थे। तो यानी कि ये जो पंजाब में जो आतंकवादी गतिविधियां उस दौर में हो रही थी, जो अलगाववादी गतिविधियां हो रही थी, उसके जो सूत्र हैं वो कनाडा से जुड़े हुए थे। उसी घटना को यहां लेते हुए ये बताया गया है, कहा गया है, मांग की गई है कि इस तरह की घटनाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, जिसके लिए मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आश्वासन भी दिया है। तो मित्रों ये दो घटनाएं, आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और वह नैतिकता का संकट। मित्र फ्रेंड्स ये आपका जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर है मेंस का, उसका विषय है, और आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखिए। मजेदार बात यह है कि अगर आप पिछले 5 साल के अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखेंगे तो कोई भी वर्ष आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें नैतिकता से संबंधित प्रश्न न पूछे गए हों और प्रोमिनेंटली न पूछे गए हों। एक तो यह कि चलताऊ तरीके से पूछ लिया गया, एकाद प्रश्न पूछ लिया गया, नहीं, नैतिकता पर एक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर जो आपकी केस स्टडीज होती है उन केस स्टडीज को आप ध्यान से पढ़िए, तो केस स्टडीज में दो चीजों में आपको उलझाया जाता है, एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस में उलझाया जाता है और दूसरा एथिक्स में उलझाया जाता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इमोशंस के साथ दोनों के बीच में द्वंद्व पैदा कर दिया जाता है, और नैतिकता का संकट फिर वही आ जाता है कि एक तरफ मानवतावाद है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, और तीसरी तरफ आपकी अपनी नैतिकता है, और नैतिकता के साथ साथ व्यावहारिकता भी है। तो इस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, जो एथिक्स, जो एथिकल वैल्यूज हैं, नैतिक मूल्य हैं, ये आपके फोर्थ पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसका स्वरूप क्या होता है, इसके प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है मित्रों, इसके लिए मैं आपको जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2017 मेंस का, उसके दो प्रश्न आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, ताकि आपको आइडिया मिले कि किसी टॉपिक पर आपको किस तरीके से, किस एंगल से प्रिपरेशन करनी है। देखिए, इसे ही एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कहते हैं, अदरवाइज तो फिर आप उठाइए चैप्टर और पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे बात उतनी बनती नहीं है जितनी कि वास्तव में बननी चाहिए। देखिए, एक प्रश्न है मित्रों जो 150 शब्दों में आपको जिसका उत्तर लिखना है और जिसको 10 नंबर अलॉट किए गए हैं, वो प्रश्न है, वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सद जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है, विवेचना कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज ट्रेस्ड टू ए नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ डिस्कस 150 वर्ड्स। अब आप देखिए कि इसमें किस तरीके से प्रश्न को पूछा गया है और क्या बात कही गई है, अब आपको समझना होगा। एक और प्रश्न है मित्रों, इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है, इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, आप इसे भी सुन लीजिए। सामान्यतया साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मोर्चा बंद नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना न तो कानून, न तो लोकतंत्रीय सरकार, न ही बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से कार्य कर पाएंगे। इस कथन से आप कहां तक इस कथन से आप क्या समझते हैं, समकालीन समय के उदाहरण द्वारा समझाइए। मित्र, बहुत 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 गजब का प्रश्न है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली इंट्रेंस्ड मोरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, नाइदर द लॉ नॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉर इवन द मार्केट इकोनॉमी विल फंक्शन प्रॉपरली। What do you understand by this statement? Explain with illustrations in the contemporary times. 150 words. देखिए, जो illustrations जो मांगे हैं उन्होंने अभी के मांगे हैं। ये सच पूछिए तो सिविल सर्विस की बहुत बड़ी चुनौती होती है, प्रिपरेशन की चुनौती होती है, और अगर जिसमें यह नहीं भी दिया हुआ हो कि कंटेम्परेरी टाइम के आप एग्जाम्पल्स दें, तो आप इसको मानकर चलिए कि वो कंटेम्परेरी टाइम्स के एग्जाम्पल को पसंद करते हैं, लेकिन इसमें सीधे सीधे उन्होंने ये बात कह दी। मित्रों, अगर ये प्रश्न आपको आज लिखना हो, इस प्रश्न का उत्तर आज लिखना हो, तो क्या आप इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स ला सकते हैं? देखिए, इस प्रश्न में जो क्षेत्र दिए हुए हैं कि कहां कहां के आपको एग्जाम्पल लाने हैं, वो बहुत क्लियर कट दिया हुआ है। न तो कानून भी काम नहीं कर सकता। क्या आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा है? डेफिनेटली मित्रों, अगर एग्जाम्पल नहीं आ रहा होता तो मैंने इस विषय को अभी तो कम से कम नहीं ही उठाया होता। आपको तुरंत आप एग्जाम्पल आ जाएगा। आप चीफ सेक्रेटरी, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ जो घटना घटित हुई है विधायकों और चीफ सेक्रेटरी के बीच, आप उसे यहां ले सकते हैं। आपने उसमें सुना है, पढ़ा भी है कि उन जो चीफ सेक्रेटरी का जो वक्तव्य है कि वो इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि विज्ञापन दिए जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार विज्ञापन नहीं दिए जा सकते थे जिस तरीके से देने के लिए कहा जा रहा था। तो ये कानून हो गया और उसके लिए फिर ये हाथापाई की गई। तो जो हाथापाई की गई है, ये अनैतिकता है, एक तरह की अनैतिकता है। आप न तो उम्र का ख्याल कर रहे हैं, न आप पद का ख्याल कर रहे हैं, और न ही आप कानून का ख्याल कर रहे हैं। मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है वह सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ इस बात से लेना देना है कि आप जो कह रहे हैं वो होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, आप देखिए, न तो लोकतंत्रीय सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नो डाउट कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो सरकार के हिस्से हैं, लेकिन यहां हम कानून को ले लेते हैं और इसके बाद आप गवर्नमेंट के रूप में आ जाइए कि किस तरीके से सरकार को जगह जगह केवल नैतिक मूल्य उस तरीके से न होने के कारण नीचा देखना पड़ता है और सरकार भी वोट की राजनीति के कारण उनके समर्थन में आ खड़ी होती है। और ऐसे उदाहरण अभी आप पद्मावत फिल्म को लेकर के वहां से निकाल सकते हैं और दूसरी इस तरह की घटनाएं काफी कुछ घटती रहती हैं। वहां भी आपको एक अलग तरह का नैतिक मूल्यों में पतन हरासमेंट दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों नॉट इवन द मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी का मतलब है अभी की जो इकोनॉमी है जिसे हम स्वतंत्र बाजार व्यवस्था कहते हैं, इसके लिए क्या कोई उदाहरण आपके ध्यान में आ रहा है? दोस्तों अभी पंजाब नेशनल बैंक की जो घटना हुई है आप इसे ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे, सीधे गवर्नमेंट के नहीं पब्लिक सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, वो एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पद पर बैठे हुए, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक नॉट टू ए पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट। देखिए जो बैंक है हमारे, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या जो पब्लिक सार्वजनिक उपक्रमों में काम कर रहे हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी है? देश की जनता के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, चाहे वो अदानी जी की फैक्ट्री हो, चाहे वो बिड़ला जी की फैक्ट्री हो, टाटा की फैक्ट्री हो, टाटा के उद्योग हो, तो वो तो टाटा बिड़ला और अदानी के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल है, राइट? अगर हम उस वैधानिक तरीके से बात करें तो, लीगल तरीके से बात करें तो। लेकिन पब्लिक सेक्टर के लोग तो पब्लिक के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए नाम भी है पब्लिक। वो क्या कर रहे हैं? चलिए एक पक्ष हो गया। दूसरा यह है कि जो इन बैंकों से फायदा ले रहे हैं या जो इन बैंकों से ऋण ले रहे हैं, जिसमें फिर आप नीरव मोदी और उनके साथ के दूसरे लोगों को देख सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि दोनों इन स्थानों पर जो संकट है वो किसका संकट है? नैतिक मूल्यों का संकट है। कानून को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए और अपने बचने के रास्ते निकाल लिए जाए और इसके बाद किसी भी सीमा तक देश का नुकसान कर दिया जाए, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा दी जाए, अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया जाए, इन सब की कोई चिंता नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके दिमाग में कोई एथिकल वैल्यू नहीं है, कोई नैतिक मूल्य नहीं है। वैधानिक तरीके से वो चीजों को सोच रहे हैं, नैतिकता के तरीके से नहीं सोच रहे हैं कि जब ये चीज सामने आएगी तो क्या होगा या हम जो करने जा रहे हैं उससे किस तरीके का, कितने लोगों का कैसा नुकसान होगा। तो मित्रों यह इसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये मैंने केवल आपको क्लू दिए हैं, सूत्र दिए हैं कि किस तरीके से आप ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो उन्हें हैंडल करेंगे और किस तरीके से समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं देती हैं, जिनकी बहुत ज्यादा अलग से समीक्षात्मक चर्चा भी नहीं होती है, उनको कैसे आप अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के संदर्भ में लेंगे और उनकी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों ये मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें थी। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आज क्लिपिंग्स की संख्या कुछ ज्यादा ही है। मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी आपके लिए ही नहीं होती हैं, लेकिन समूह को ध्यान में रख करके ये क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। टॉपिक जरूर इंपॉर्टेंट होती है, अब आपको निर्णय लेना है कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं विष्णु अरोड़ा, जतिंदर अरोड़ा, कपिल वडियार जयपुर राजस्थान से, साहिब कृष्ण जम्मू से, विकास कन्नौजिया लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, भारत कुमार भिवानी हरियाणा से, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, रीना गिरी, प्रिया गुप्ता दुबई से और अमन कुमार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।